SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी होने या न होने की दिशा तय करने में सहायक होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 4-3 के बहुमत से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए एक होलिस्टिक और रियलिस्टिक तरीका निर्धारित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने अपने निर्णय में संविधान के आर्टिकल 30(1) के तहत माइनॉरिटी कैरेक्टर के मेन एसेंशियल एलिमेंट्स निर्धारित किए, लेकिन साथ ही उन्होंने AMU के तथ्यात्मक आकलन को 3 न्यायाधीशों की एक छोटी बेंच पर छोड़ दिया। इस फैसले ने AMU के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा वापस अर्जित करने का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति SC शर्मा ने बाकी 4 न्यायाधीशों के फैसले से असहमति जताई। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी सहित कई मुस्लिम उलेमाओं ने इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्हें आशा है कि AMU जल्द ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। AMU के जनसंपर्क अधिकारी उमर सलीम पीरजादा ने इस फैसले पर नपातुला बयान दिया।
We remain respectful to the court's decision and express our commitment to fully examining the judgment details. Once our competent administrative team has completed its review, we will be in a position to address all the questions from the media in detail. For now, we continue our dedication to AMU's legacy of academic excellence, nation building and inclusivity.
संक्षेप में आपको बता दें कि सन 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के संविधान संशोधन को रद्द करते हुए कहा था कि AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसी फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और 2019 में मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया था। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन की प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी महाआघाड़ी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। श्री शाह ने भाजपा चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए महाआघाड़ी पर निशाना साधा।
यहाँ बहुत सारी बहनें भी आई, लाडली बहन योजना का 1500 का चेक आता है या नहीं आता है, जरा जोर से बोलो, आता है या नहीं आता है? ये अगाड़ी आएगी तो बंद कर देंगे। इन्होंने इसका विरोध किया है, मगर चिंता मत करो, मैं पूरे महाराष्ट्र में जाकर आया हूँ। महायुति की सरकार बनने वाली है, महायुति की, और महायुति की सरकार बनते ही आपका 1500 रुपये को बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी।
जवाब में श्री खड़गे ने महाअघाड़ी का चुनावी घोषणा पत्र महाराष्ट्र नामा जारी करते हुए जनता से वायदे किए। साथ ही उन्होंने भाजपा के नए नारे बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं पर हमला बोला।
इन्होंने बांटने का काम खुद किया। कैसा? इन्हों तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे, हमको काटते ही आ रहे हैं। बांटे कैसा? इस देश में मनुस्मृति बनाए, मनुस्मृति में पहले ही बांट दिए। एक है ब्राह्मीण, दूसरे बैठे क्षत्रिया, तीसरे बैठे वैश्य, चौथे बैठे शूद्र और एक क्लास निकला उसमें अति शूद्र। अरे पहले 5 लोगों को तो आपने ही बांटा, तो एक ही कहा रह गया, कहा है यूनिटी। और मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ।
एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित शूटर शिव कुमार गौतम को रविवार के दिन उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शूटर शिव कुमार गौतम को दो अन्य लोगों के साथ मुंबई पुलिस और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। ये तीनों लोग उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीनों को मुंबई लाया जा रहा है। श्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी के बांद्रा ईस्ट स्थित कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत में जलवायु परिवर्तन का असर हिमालय की चोटियों पर साफ दिखाई दे रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जैसी ऊंचाइयों पर जहां अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बर्फ पड़ जाया करती थी, वहां नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होने पर भी बर्फबारी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये हालात मानसून के बाद होने वाली बारिश के कम होने से हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के बाद अब तक पहाड़ी क्षेत्रों में 90% से भी कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इन हालात के पीछे ला नीना इम्पैक्ट का कमज़ोर पड़ना है, जिसकी वजह से हवा गति नहीं पकड़ रही है और मैदानी क्षेत्रों में भी हवा कमोबेश स्थिर रहने की वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सन 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए कई भारतीय कलाकारों को नामांकित किया गया है। ये पुरस्कार लॉस एंजलिस के crypto.com एरिना में 2 फरवरी 2025 में दिए जाएंगे। भारतीय संगीतकार और पर्यावरणविद रिकी केज का चौथी बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया है। अभी तक रिकी केज 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। इस बार उनकी एल्बम ब्रेक ऑफ डॉन को बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी श्रेणी में नामांकित किया गया है। श्री केज ने अपनी एल्बम के नामांकित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एल्बम संगीत और पर्यावरण में मेरे विश्वास को दर्शाती है।
So first of all, this album has been does not have a collaborator. My previous albums always had a collaborator. Like I collaborated in my 2015 Grammy Award-winning album with Wouter Kellerman, South African flute player, and then Divine Tides. My next two Grammys was with Stuart Copeland, who is considered to be the greatest drummer in the history of music. And this album was entirely created by me. But I've always been a lifelong environmentalist. The environment has always been on my mind when it comes to my music and in my daily life. And there is this very ancient philosophy, an ancient Indian Hindu Buddhist philosophy, which says that that the impurities of the environment is a direct reflection of the impurities of the mind. So that is why I thought that I need to concentrate a lot on mental wellness and mental health, and that is how this album was created. So every single one of these songs, there are 9 songs in the album, every single song is based on an ancient Indian rag. So what I've done is that I've taken ancient Indian, Indian-rooted wellness music, and I've created this particular album to combat the global burden of mental health.
इसी श्रेणी में सितार वादक और संगीतकार अनुष्का शंकर द्वारा चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन भी शामिल है। उन्होंने जैकब कोलियर के गीत अ रॉक समवेयर में अपनी विशेष भूमिका के लिए एक अतिरिक्त नामांकन भी अर्जित किया, जिसमें गायिका वारिजाश्री वेणुगोपाल भी शामिल हैं। इस श्रेणी में अन्य नामांकनों में राधिका वेकारिया द्वारा वॉरियर्स ऑफ लाइट और उद्यमी और संगीतकार चंद्रिका टंडन द्वारा तैयार त्रिवेणी एल्बम्स भी शामिल हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।